नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ 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 नमो भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये
ततो जयमुदीरये
नष्टप्रायेष्वभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया
भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके
भक्तिर्भवति नैष्ठिके
समस्त तस्यानया भगवतः परिकर्मशुद्ध
सत्त्वात्मनस्तदनुसंस्मरणानुपूर्त्या
ज्ञानं विरक्तिमदभून्निशिते
चिच्छेदसंशयपदं निजजीवकोशम्
तस्यानया भगवतः परिकर्मशुद्ध
सत्त्वात्मनस्तदनुसंस्मरणानुपूर्त्या
ज्ञानं विरक्तिमदभून्निशितेन येन चिच्छेदसंशयपदं निजजीवकोशम्
तस्यानया भगवतः परिकर्मशुद्ध
सत्त्वात्मनस्तदनुसंस्मरणानुपूर्त्या ज्ञानं विरक्तिमदभून्निशितेन येन चिच्छेदसंशयपदं निजजीवकोशम्
तस्यानया भगवतः परिकर्मशुद्ध ज्ञानं विरक्तिमदभून्निशितेन येन
चिच्छेदसंशयपदं निजजीवकोशम्
Tasyanaya Bhagavatah Parikarma Shuddha.
Tasyanaya Bhagavatah Parikarma Shuddha.
Sattvātmanastadanu Samsmaranānu Pūrtya.
Sattvātmanastadanu Samsmaranānu Pūrtya.
Jnānam Virakti Madabunnisitena Ena.
Jnānam Virakti Madabunnisitena Ena.
Cheda-samshaya-padam-nija-jeeva-kosham.
Tasyanaya-bhagavata-parikarma-shuddha.
Sattvātmanastadanu-samsmaranānu-purtyā.
Jnānam virakti madabunnisitena yena. Cicceda-samshaya-padam-nija-jeeva-kosham.
Tasya,
uska,
anaya,
isse,
bhagavatah,
bhagavan ka,
parikarma,
bhakti ke karya,
shuddha,
divya,
sattva, astitva,
atmanah,
man ka,
तत्
परमेश्वर का अनुसंस्मरण
निरंतर स्मरण
अनुपूर्तिया ठीक से किए जाने पर ज्ञानम् विरक्ति
अनासक्ति
मत रखते हुए अभूत
प्रकट हुआ
निशितेन उत्कट कार्यों से येन
जिससे
चिच्छेद
पृथक होते हैं
संशय पदम
संदेह की स्थिति
निज अपने जीवकोशम
जीवात्मा का आवरण
कोश। अनुवाद और तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद: निरंतर भक्ति करते रहने से पृथु महाराज का मन शुद्ध हो गया, अतः वे भगवान के चरणारविंद का निरंतर चिंतन करने लगे। इससे वे पूरी तरह से विरक्त हो गए और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके समस्त संशयों से परे हो गए। इस तरह वे मिथ्या अहंकार तथा जीवन के भौतिक बोध से मुक्त हो गए। तो तात्पर्य बहुत लंबा है, तो मैं केवल पहला परिच्छेद पढ़ूंगा, कल फिर आगे तात्पर्य को जारी रख सकते हैं।
दो परिचय
हो गया। परिचय कहाँ से शुरू करना? फिर
श्लोक के नीचे
नाम जो भी विचार है ना, श्लोक के बाद।
तो नियमित भक्ति करते रहने से वो है। अच्छा, तो नियमित भक्ति करते रहने के कारण भक्त को जीवन की दिव्य स्थिति प्राप्त होती है। उसका मन अध्यात्म में लगा रहने के कारण वह भगवान के चरण कमलों के अतिरिक्त कुछ और सोच ही नहीं सकता। संस्मरण अनुपूर्तिया शब्द का अर्थ यही है। भगवान के चरण कमलों का निरंतर चिंतन करते हुए भक्त अविलंब शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है। शुद्ध सत्व वह पद है जो सतोगुण समेत प्रकृति के गुणों से ऊपर होता है। इस भौतिक जगत में सतोगुण परम सिद्धि का सूचक है, किंतु मनुष्य को इस गुण को भी लांघ कर शुद्ध सत्व अवस्था तक पहुंचना होता है, जहां भौतिक प्रकृति के तीनों गुण अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है। यदि किसी की पाचन शक्ति प्रबल है तो भोजन करने के पश्चात उसके उदर में स्वतः इतनी अग्नि उत्पन्न हो जाती है कि बिना किसी औषध के सब कुछ पच सकता है। इसी प्रकार भक्ति की अग्नि इतनी प्रबल होती है कि भक्त को पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने या भौतिक आकर्षण से विरक्ति के लिए अलग से कुछ नहीं करना होता है। ज्ञानी ज्ञान के विषय में दीर्घ काल तक विवेचन करते रहने से भौतिक आकर्षणों से विरक्त हो सकता है और अंत में इस तरह ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंच सकता है, किंतु भक्त को यह सब झंझट नहीं करनी पड़ती। अपनी भक्ति के बल पर वह बिना किसी शंका के ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। योगी तथा ज्ञानी अपने स्वाभाविक स्थिति के संबंध में सदैव संशय ग्रस्त रहते हैं, इसीलिए वे अपने को गलती से परमेश्वर से एक हो जाने की सोचते रहते हैं। किंतु भक्त का परमेश्वर से संबंध निश्वास रूप से स्पष्ट रहता है और उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि उसकी स्थिति नितांत दास की है। ज्ञानी तथा योगी भक्ति के बिना अपने को मुक्त समझ सकते हैं, किंतु उनकी बुद्धि भक्त जितनी विमल नहीं होती। दूसरे शब्दों में ज्ञानी तथा योगी जब तक भक्तों की स्थिति को प्राप्त नहीं हो लेते तब तक वास्तव में मुक्त नहीं हो सकते। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 2 अध्याय के 32वें श्लोक का कथन है, आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो नाद्रित युष्मदंग्रयः। ज्ञानी तथा योगी ब्रह्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद तक उठ सकते हैं, किंतु भगवान के चरणारविंद के प्रति भक्ति के अनुभव में वे पुनः भौतिक प्रकृति में आ गिरते हैं। अतः ज्ञान तथा योग्य को मुक्ति की असली विधि नहीं मान लेना चाहिए। महाराज पृथु ने भक्ति के द्वारा इन स्थितियों को स्वतः लांघ लिया था। चूंकि वे भगवान के शक्त्याविश अवतार थे, अतः मुक्ति पाने के लिए उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा। वे पृथ्वी पर भगवान की इच्छा पूर्ति हेतु वैकुंठ लोक से आए थे। फलतः उन्हें ज्ञान योग या कर्म किए बिना ही भगवान के धाम को वापस जाना था। यद्यपि पृथु महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे, फिर भी उन्होंने लोगों को जीवन के कर्तव्यों को सही ढंग से संपन्न करने तथा अंततः भगवान के धाम वापस जाने की समुचित विधि सिखाने के लिए भक्ति की प्रक्रिया स्वीकार की। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सकृत् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सजावट किसने की है फूलों की? उद्धव हरि प्रभु। फूल ही फूल सब जगह। बहुत अच्छा, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे, तो इसलिए गोकुल धाम में हमें बहुत सारे फूल उगाने चाहिए और फिर बड़े भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करने चाहिए। ये प्रस्ताव सबको मंजूर है? कबूल? हाँ। तो केवल फूल पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति पहरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। तो भगवान को प्रसन्न करना कठिन नहीं है, केवल एक सरल भाव से, सरल निष्कपट हृदय से हमने भगवान को छोटी छोटी वस्तुएं भी अर्पण की, जैसे फूल हैं, तो कहाँ से आवाज आ रहा है? यहाँ पे है क्या? तो बहुत सरल चीजें हैं जो भगवान को अर्पण करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को बहुत सारा धन या ऐश्वर्य या ठाट इत्यादि इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। भगवान को प्रेम पुजारी कहते हैं। भगवान अपने भक्तों से प्रेम चाहते हैं। ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम, वो भजन आपने सुना है ना। तो भगवान केवल हमारी भक्ति चाहते हैं और हम जो भी भगवान को अर्पण करते हैं, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो वस्त्र और आभूषण हो, चाहे वो फूल हो, चाहे वो और कुछ भी हो, भगवान उन वस्तुओं से इतना प्रसन्न नहीं होते हैं जितना कि हमारे भाव से। हम किस भाव से इन वस्तुओं को अर्पण करते हैं ये महत्व की बात है, क्योंकि मुख्य जो संबंध भगवान का भक्तों के साथ है वो प्रेम का है, भक्ति। और भक्ति क्योंकि ये दिव्य है, इसलिए भक्त भी दिव्य बन जाता है। बहुत सरल बात है। ये बताओ, भक्ति दिव्य क्यों है? सरल प्रश्न है, भक्ति दिव्य क्यों है? क्योंकि भक्ति का संपर्क करने से भक्त दिव्य बन जाता है। प्रभुपाद जी यहाँ कर कहते हैं तात्पर्य के प्रारंभ में ही, जहाँ से हमने शुरू किया, नियमित भक्ति करते रहने के कारण भक्त को जीवन की दिव्य स्थिति प्राप्त होती है। तो भक्ति करने से भक्त की अवस्था दिव्य क्यों हो जाती है? क्योंकि भक्ति दिव्य है। परंतु भक्ति दिव्य क्यों है?
क्योंकि भक्ति जो है वो, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण दिव्य है, तो जो भक्ति जो है भगवान श्री कृष्ण की ही शक्ति, वही कारण दिव्य है।
तो भक्ति भी भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। किस प्रकार की शक्ति है? अंतरंगा शक्ति, विशेष रूप से आह्लादिनी शक्ति, लादिनी शक्ति भगवान की, जिनकी मूर्तिमान स्वरूपिणी कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो इसलिए क्योंकि ये शक्ति दिव्य है, श्रीमती राधा रानी स्वयं है, जो कि भगवान की शक्ति है, इसलिए भक्ति भी दिव्य है। और भक्ति क्या है? भगवान के प्रति प्रेम। तो क्योंकि भगवान दिव्य है, इसलिए भगवान की शक्ति भी दिव्य है। तो जो भी इन शक्तियों के माध्यम से भगवान के संपर्क में आते हैं, वो भी दिव्य बन जाते हैं। इसके लिए उदाहरण कौन सा दिया है प्रभुपाद जी ने अनेक बार? अग्नि और
लोहा।
तो क्या ये उदाहरण है, समझाइए।
अगर हम लोहे को गर्म कर देंगे
कैसे
अग्नि में,
हाँ,
तो अग्नि का पूरा उसमें ये आ जाता है, शक्ति आ जाता है,
गुण आ जाता है,
गुण आ जाता है।
अग्नि का गुण क्या है?
गर्म होना या प्रकाश,
गर्म होना,
हाँ, तो दोनों भी उसमें आ जाते हैं, तो लोहा भी अग्नि जैसा बन जाता है।
इसलिए
भक्ति पर भक्ति भी भक्ति के संग में आने के बाद हम ये हो जाते हैं, भक्ति के गुण पूरे हमको मिल जाते हैं।
भगवान भक्ति के द्वारा भगवान के संपर्क में आते हैं। तो जो भगवान का संपर्क करता है वो दिव्य हो जाएगा, क्योंकि भगवान दिव्य है। और संपर्क करने का माध्यम क्या है? भक्ति। भक्ति के अतिरिक्त और कोई भी ऐसे मार्ग नहीं है जिसके द्वारा हम भगवान के संपर्क में आ सकें। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो अन्य आध्यात्मिक मार्गों में होते हैं, जैसे ज्ञान योगी होते हैं, अष्टांग योगी होते हैं, कर्म योगी होते हैं, वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते, क्योंकि ये जितने भी मार्ग हैं ये भक्ति के ऊपर निर्भर होते हैं अपने ही पथ में सफलता प्रदान करने के लिए। दूसरे शब्दों में, यदि किसी कर्मयोगी को कर्मयोग में सफलता चाहिए तो उसको भक्ति की सहायता की आवश्यकता है। किसी अष्टांग योगी को अपने पथ में सफलता चाहिए तो उसको भक्ति की सहायता लेनी चाहिए। कोई ज्ञान योगी ज्ञान योग के पथ में सफल होना चाहता है तो उसको भी भक्ति योग की सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि अपने आप में ये पूरी तरह से भगवान से संपर्क नहीं कर सकते हैं। भगवान का संपर्क केवल भक्ति से हो सकता है। इसलिए यद्यपि अन्य आध्यात्मिक मार्ग जितने भी हैं वो भक्ति के ऊपर निर्भर हैं, परंतु भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति किसी अन्य मार्ग के ऊपर निर्भर नहीं है। और इसके लिए प्रभुपाद जी ने श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का दिया हुआ एक दृष्टांत बतलाया है। कौन सा है वो दृष्टांत जो हमने अभी भी तात्पर्य में पढ़ा? हाँ,
इसका पचन शक्ति, जिसका अग्नि पचन करने के लिए तेज है, वो कुछ भी खाने से बच जाता है।
हाँ, तो
एक्स्ट्रा मतलब अन्य औषधि खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
हाँ, तो
ऐसे ही केवल भक्ति करने से ही भगवान के प्रति वो रुचि भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं, अन्य कोई मार्ग को अपनाने की आवश्यकता।
बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। जब किसी का स्वास्थ्य ठीक हो तो उसकी पाचन शक्ति अच्छी होती है। आपको पता है आयुर्वेद में रोगों का मूल कारण क्या है?
अपचन।
अच्छा, भोजन क्या है जो आप खाते हैं? वो भोजन अन्न।
जो आप के लिए पोषण
जो आप खाते हैं क्या वो भोजन है? आहुति ठीक है, परंतु क्या जो आप खाते हैं वो भोजन है?
जो हम पचाते हैं वो भोजन है।
हाँ बिल्कुल सही, जो हम खाते हैं वो भोजन नहीं है, जो हम पचाते हैं, जब ये भोजन अंदर जाता है और जब वो पच जाता है तब वो भोजन हो जाता है। और जो पचता नहीं है पेट के अंदर वो विष बन जाता है। इसको आयुर्वेद में संस्कृत में आम बोलते हैं। आम मतलब आंबा नहीं, ये आम अलग है, आम का मतलब यहाँ विष। तो जो भोजन हम मुंह में डालते हैं, चबाते हैं, निगल लेते हैं, पेट के अंदर जाता है, परंतु वो पचता नहीं है यदि, या थोड़ा भाग पचता है, थोड़ा भाग रह जाता है, तो जो भाग रह, जो पच गया वो भोजन, असली भोजन, तो उसमें जो पौष्टिकता है वो शरीर को प्राप्त होगी, फिर शरीर को ताकत मिलेगी, शरीर को पोषण मिलेगा, और ये फिर सारे शरीर में ये ताकत फैल जाएगी। परंतु जो भाग पचता नहीं है वो विष बन जाता है, और वही विष पेट में रह के फिर सारे शरीर में रक्त आदि के माध्यम से फैल जाता है, और इससे रोग उत्पन्न होता है। तो आयुर्वेद में बताया गया है कि रोगों का, अस्वस्थ होने का मूल कारण है अपचन, और खास करके जिनकी जठर अग्नि कमज़ोर होती है उनके लिए पचन की समस्या होती है। तो जिस प्रकार से जब हम यज्ञ में कोई आहुति डालते हैं स्वाहा स्वाहा कह के, उसी प्रकार से हमारे पेट में भी एक अग्नि है जिसको क्या कहते हैं, जठर अग्नि, और भगवत गीता में वैश्वानरो वैश्वानरः, क्या क्या श्लोक है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणाम देहमाश्रित, कि मैं ही पेट के अंदर निवास करने वाला वो जठर अग्नि हूँ, और पेट के अंदर बैठ के मैं सारे अन्न को पचन करता हूँ, पच देता हूँ मैं। तो ये जठर अग्नि जो है ये भी भगवान की शक्ति है, विशेष शक्ति है, और जिसकी पचाने की अग्नि कम है, जिसको मंदाग्नि बोलते हैं, मंद अग्नि है, तो भोजन पचा नहीं सकता। परंतु जिसकी जठर अग्नि अच्छी है वो सब कुछ पचा लेगा अच्छी तरह से, और अधिक भोजन भी खा पाएगा। साधारणतः युव अवस्था में जठर अग्नि बहुत प्रबल होती है, इसलिए कभी कभी नव युवकों को बताया जाता है, बूढ़े लोग नव युवकों को बोलते हैं कि अरे तुम तो जवान हो, तुम्हें तो पत्थरों को भी हजम कर लेना पर तो आजकल नौजवानों को भी पचन ठीक नहीं है ना, तो सबकी मंदाग्नि है, अग्नि जठर अग्नि मंद है, मंद अर्थात बहुत कमजोर है, इसलिए वो लोग पचन नहीं कर पाते हैं। पचन नहीं कर पाते तो वहां से सारी बीमारियां शुरू हो जाती है, फिर थकावट ज्यादा होने लगती है, नींद ज्यादा आती है, कभी कभी ठीक नहीं लगता है शरीर, आलसपन हो जाता है, फिर तरह तरह के अन्य बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं, बहुत सारी बीमारियां। बस पेट ये जड़ है, पेट ठीक रहा, जठर अग्नि ठीक रही, सब कुछ ठीक रहेगा। तो इसलिए यदि व्यक्ति स्वस्थ है, स्वस्थ अर्थात जिसकी जठर अग्नि ठीक है, हाँ दूसरी कोई समस्या हो वो अलग बात है, परंतु ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो यदि उसकी जठर अग्नि सही है, स्वस्थ है वो, तो बस वो भोजन पाएगा, अपने आप ही भोजन का पचन हो जाएगा उसे, और सब वो हाजमोला वगैरह सब खाने की आवश्यकता नहीं होगी, उसको अपने आप ही पेट की शक्ति इतनी होगी कि वो पचन कर पाएगा। तो इस प्रकार से जो पचन है वो एक स्वतंत्र कार्य है, व्यक्ति का भोजन करना वो स्वतंत्र कार्य है, क्यों, भक्ति जो अग्नि अग्नि पचा देती है उसकी, परंतु यदि अग्नि ठीक नहीं हो तो फिर और चीज़ों की आवश्यकता लगती है, कुछ हजम करने के लिए कुछ औषधि ले लो, जड़ी बूटी ले लो। साधारणतः इसलिए भारत में देखा जाता है कि हर एक बार भोजन लेने के प्रसाद लेने के बाद कुछ तो पचन के लिए लेते हैं। कौन सी चीज़ें लेते हैं पचन के बाद, अरे भोजन के बाद? बड़ी शेप लेते हैं, अजवाइन लेते हैं, इलायची, जीरा, पचनामृत लेते हैं। मट्ठा भी लेते हैं। हाँ, तो अजवाइन और बड़ी शेप और जीरा, इनका समान भाग बना के मिश्रण करके रखने से और भोजन के बाद उसका लेने से पचन अच्छा हो जाता है। परंतु उसकी आदत नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि अपने जठरग्नि को ही इतना मजबूत करना है कि वो अपने आप ही खा लेगा, पचन कर लेगा। और कभी कभी प्रसाद शुरू करने के पहले एक आदत है, एक प्रथा भी है कि अदरक के छोटे टुकड़े देते हैं 2-3। अदरक को अच्छी तरह से चबाना है। अदरक चबाने से क्या होता है, कैसे लगता है? ठंडा ठंडा मीठा मीठा लगता है, कैसे लगता है? तीखा लगता है। और वो अंदर जाके क्या करता है, जठरग्नि को प्रज्वलित करता है। तो इसलिए फिर उसके बाद जब हम भोजन लेते हैं तो भोजन को पचा सकते हैं हम। तो खैर, क्योंकि लोगों की जठरग्नि साधारणतः इतनी मजबूत या नहीं होती है, तो लोगों को भोजन के पहले भोजन के बाद में कुछ सहायता की आवश्यकता होती है। आप में से कितने भक्तों की जठरग्नि एकदम मजबूत है? है किसी की? अच्छे, किसी की नहीं?
पहले थे
अभी नहीं। पहले कितने खा सकते थे?
अच्छा खासा।
कितने भाकरी खा सकते थे?
4-5 भाकरी।
अच्छा, और अभी?
अभी 2 बस।
2 बस नहीं होता है अभी। जो जवान लोग हैं, आपकी पाचन शक्ति कितनी है? है? अच्छा, नहीं
है,
है ना? कितने भाकरी खाते हो?
6 तक।
6 भाकरी? हाँ। बड़े मोटे मोटे भाकरी? अरे वाह, सचमुच 6 भाकरी खाते? 5 खाते, क्योंकि सेवा भी ऐसे है ना, आना करना जाना। अच्छा, ऐसे होना चाहिए, अच्छी जठरग्नि होने चाहिए। जब पांडव सब कुछ त्याग लेते हैं, परीक्षित महाराज को राज सिंहासन पर बिठाकर पांडव और द्रौपदी चले जाते हैं हिमालय में, बराबर है ना? तो जब युधिष्ठिर महाराज आगे जाते हैं, उनके पीछे पीछे उनके 4 भाई होते हैं और उनके पीछे द्रौपदी होती है। तो जैसे जैसे वो आगे चलते रहते हैं हिमालय में, ऊपर चढ़ते जाते हैं, सबसे पहले द्रौपदी जो सबसे पीछे होती है वो गिर जाती है। और युधिष्ठिर महाराज रुकते नहीं, पीछे भी नहीं देखते, क्योंकि अभी पूरी तरह से निराशक्त हो गए हैं। आगे तो उनके पीछे पीछे चलने वाले जो भाई होते हैं वो युधिष्ठिर से पूछे हैं कि द्रौपदी क्यों गिरी? गिरी मतलब उनका देह त्याग दिया, क्योंकि द्रौपदी के 5 पति थे, परंतु पक्षपात था अर्जुन के प्रति, ये दोष था, इसलिए गिर पड़ी। फिर उसके बाद चले वो नकुल, गिर पड़े। युधिष्ठिर महाराज ने पीछे भी नहीं देखा, तो भाइयों ने पूछा कि हे युधिष्ठिर, नकुल क्यों गिर पड़ा? क्योंकि नकुल और सहदेव में एक बुद्धिमान था, एक बहुत सुंदर था. कौन था मुझे याद नहीं आ रहा है अभी. शायद सहदेव बुद्धिमान था, नकुल सुंदर था. तो युधिष्ठिर ने कहा क्योंकि नकुल को अपने सौंदर्य का बहुत गर्व था, गिर पड़ा. और फिर आगे सहदेव की बात आई, सहदेव भी गिर पड़ा. क्यों गिरा सहदेव? उसको अपनी बुद्धि का बहुत गर्व था. फिर अर्जुन गिर पड़ा. फिर अरे अर्जुन क्यों गिरा? भीम ने युधिष्ठिर को पूछा. दो ही बाकी थे. क्योंकि अर्जुन को अपना घमंड था, उसने अपना बहुत बड़ा व्रत लिया. ऐसे ऐसे आराम से व्रत ले लेता था, भयंकर व्रत. और फिर कभी कभी पालन नहीं कर सकता था. जैसे जयद्रथ के समय व्रत लिया ना कि मैं सूर्यास्त के पहले इसको मार दूंगा. तो ऐसे अपने शक्ति के ऊपर थोड़ा घमंड था और ऐसे बस व्रत ले लिया करता था, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, इसलिए वो गिर पड़ा. फिर अब दोनों भीम और युधिष्ठिर चल रहे थे, साथ में कुत्ता भी था, वो भी जा रहा था. और फिर भीम गिर पड़े तो नीचे ज़मीन पे लेटे लेटे ही युधिष्ठिर आगे आगे जा रहे थे, पीछे भी नहीं देखा. तो भीम ने पूछा, युधिष्ठिर मैं क्यों गिर पड़ा हूँ? क्योंकि तुम्हारा दोष ये है कि तुम्हारी जठर अग्नि बहुत ज़्यादा है, तुम बहुत खाते थे इसलिए ये तुम्हारा दोष है. और फिर युधिष्ठिर अकेले चले गए. वो कुत्ता वास्तव में यमराज थे, धर्मराज. तो जो निर्जल उपवास होता है, निर्जल एकादशी, वो भीमसेन के कारण हुआ. भीमसेन ने व्यासदेव से कहा कि मेरी जठर अग्नि इतनी प्रज्वलित जलती है कि मेरे लिए एकादशी का पालन करना संभव नहीं है, तो मुझे कुछ छूट दे दीजिए इसके बारे में, निर्जल नहीं कर पाऊंगा मैं. तो व्यासदेव ने कहा, ऐसे तो नहीं किया जा सकता, छूट तो नहीं दी जा सकती, परंतु ठीक है, तुम्हारे लिए एक व्यवस्था करता हूँ कि साल में कम से कम एक एकादशी का तुम निर्जल उपवास रखो. और उस एक एकादशी में निर्जल उपवास रखने से सारे अन्य एकादशियों का पालन करने के लाभ मिल जाएंगे. और अन्य एकादशियों में भीमसेन ऐसा नहीं कि अनाज आदि खाते थे, केवल जलपान फल कुछ खाते थे, परंतु उसके बिना भीमसेन को रहा नहीं जाता था, इतनी तीव्र जठर अग्नि उनकी थी. तो इसलिए फिर ऐसी व्यवस्था हो गई. तो भीमसेन का जठर अग्नि बहुत प्रसिद्ध है, परंतु उनके लिए अंत में समस्या भी बन गई. तो ये जठर अग्नि, तो जिसकी जठर अग्नि ठीक होती है उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है. तो जिसका स्वास्थ्य अच्छा होता है उसको किसी अन्य वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती है भोजन पचाने के लिए, जठर अग्नि ही पर्याप्त होती है. तो ठीक उसी प्रकार से जो आध्यात्मिक जीवन में स्वस्थ है, अर्थात जिसकी भक्ति की अग्नि बहुत तीव्रता से जल रही है, तो उसको अन्य आध्यात्मिक मार्गों की सहायता की आवश्यकता नहीं है. जैसे कि कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, क्योंकि अपने आप में ये स्वतंत्र है. तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण दृष्टांत यहाँ पे दिया हुआ है. तो भक्ति स्वतंत्र है, अन्य योग पद्धतियां स्वतंत्र नहीं है, वो भक्ति के ऊपर निर्भर हैं. तो अन्य जो लोग हैं वो भले निराकार ब्रह्म तक भी पहुंच सकते हैं, उससे अधिक नहीं पहुंच सकते. अधिक से अधिक अपने पथ में सब कुछ ठीक करने से और भक्ति की सहायता लेने से वो अधिक से अधिक निराकार ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं, परंतु वहां जाकर भी टिक नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई रस नहीं है, वहाँ पे भगवान का संपर्क नहीं है, सानिध्य नहीं है, वो प्रेम नहीं है, इसलिए फिर वो गिर जाते हैं। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतंत्यधो नादृत युष्मद अंग्रयः। क्योंकि जो निराकार ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं वो भगवान के चरण कमलों का अनादर करते हैं, क्योंकि वो भगवान के व्यक्तित्व को नहीं मानते हैं, तो ये भगवान के प्रति एक बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। परंतु जो भक्त होते हैं, भले वो इतने विद्वान न हो, संस्कृत पंडित न हो, बड़े तपस्वी न हो, तंत्र मंत्र आदि में विशारद न हो, परंतु साधारण व्यक्ति हैं, पर जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, और जो भी उन्हें जीवन में उपलब्ध होता है वो भगवान को अर्पण करते हैं प्रेम से, तो ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति गरीब हो सकता है, धनी हो सकता है, कोई अंतर नहीं पड़ता। ऐसे कितने सारे साधु थे तो बहुत विरक्त जीवन बिताते थे। पृथ्वी महाराज तो राजा थे, विश्व सम्राट थे, परंतु वो भी बहुत अच्छे भक्त थे, इसीलिए वो आराम से त्याग कर पाए, वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार कर पाए और आध्यात्मिक जीवन की चरम सीमा को भी प्राप्त कर पाए। प्रभुपाद जी यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वो कहते हैं पृथ्वी महाराज के बारे में, वे पृथ्वी पर भगवान की इच्छा पूर्ति हेतु वैकुंठ लोक से आए थे, फलतः उन्हें ज्ञान योग या कर्म किए बिना ही भगवान के धाम को वापस जाना था। दूसरे शब्दों से पृथ्वी महाराज शक्त्यावेश अवतार हैं, परंतु कहाँ से आए वो? वैकुंठ जगत से ही आए थे, भगवान की इच्छा के अनुसार आए थे, और इसलिए उन्हें ये सब अन्य कृत्रिम पद्धतियों की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं थी। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, योग मार्ग इत्यादि, केवल भगवान की भक्ति करके वो अपने जीवन को सफल बना पाए। तो ये भक्ति मार्ग बहुत ही सुलभ है, और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें ये एक अवसर मिला है। परंतु अति परिचयात अवज्ञान नहीं होना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये इतना सरल है और फिर इसको साधारण लेना, सस्ता लेना, ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें हर दिन याद रखना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो अति दिव्य है, दिव्यता के चरम का चरम स्तर है। भक्ति से जो एक दिव्यता की शिखर तक हम पहुंच सकते हैं वो अन्य किसी भी मार्ग से हम नहीं कर सकते। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इतने विद्वान नहीं हैं, हम तपस्या इतना नहीं करते हैं, पंडित नहीं है, कोई बात नहीं। केवल प्रभुपाद जी ने बतलाए हुए हमें कार्यक्रम का पालन करना चाहिए और सब ठीक ठाक प्रगति होती रहेगी, जैसे कि पृथ्वी महाराज की हुई। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? तो ठीक है, आप एक एक करके जो आपने आज के प्रवचन में सुना वो बिंदु बोलते जाइए, परंतु एक बार कोई बिंदु बोली गई तो उसको दोबारा कोई और भक्त दोहराना नहीं, नए नए बिंदु जो है वो बताइए संक्षेप में, एक वाक्य में, ठीक है? बताते जाइए सर।
छोटा सा
प्रश्न था,
जैसे पृथ्वी महाराज तो अंश अवतार है भगवान के, अवतार है, लेकिन जीव जो है भगवान के अंश अवतार तो नहीं, अंश है,
हाँ, तो भगवान की शक्ति हमेशा होता है, जीव है, ऋतु महाराज भी जीव तत्व है, परंतु उनको विशेष शक्ति प्रदान की गई है, अद्भुत शक्ति।
तो अभी वो भक्ति में वो भी भक्ति कर रहे, साधारण जीव भी जो हम जैसे करने का प्रयास तो कर रहे, लेकिन यहाँ पर उदाहरण से बता रहे हैं।
हाँ, क्योंकि वो तो शुद्ध भक्त बन गए, पहले से शुद्ध भक्त थे, अभी पूरे तरह से शुद्ध भक्त बन गए।
तो हम उन्हीं की तरह जो जीव है ऐसे ही बन सकते हैं क्या?
शुद्ध भक्त बन ऐसे ही, मतलब शुद्ध भक्त?
हाँ,
अवश्य, वही तो हमारा जीवन का उद्देश्य है, इसलिए तो हम इस संस्था से जुड़े हैं शुद्ध भक्त बनने के लिए। बस बनना चाहिए बल्कि हमें, और गोकुल धाम इस चीज के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है, क्योंकि सारे ब्रह्मांड में भगवान की दृष्टि गोकुल धाम आप सबके ऊपर है। ये लोग बहुत अच्छे अच्छे भक्त हैं, कितना परिश्रम करते हैं मेरे लिए जंगल में रह के, ऐसे सोच रहे हैं भगवान। हरे कृष्णा। तो जल्दी जल्दी दो चार मिनट में मुख्य बिंदु बता दीजिए। हाँ,
जब कोई भक्ति करता है तो उनको ये संसार से विरक्ति के लिए या ज्ञान प्राप्त करने के लिए अलग से प्रयास करने का जरूरत नहीं पड़ता।
बिल्कुल, बहुत अच्छा।
और भगवान जो छोटे छोटे चीज जो हम अर्पण करते हैं और उसमें जो प्रेम है उससे भगवान खुश है और उससे वो संतुष्ट होते हैं।
बहुत अच्छा।
तो उपाध्याय उदाहरण दे रहे हैं कि जो पचनाग्नि का जठराग्नि में अगर जिसका प्रबल है उसको पचाने के लिए और कोई दूसरा ये करने की पचाने की ये नहीं है, आवश्यकता नहीं है, तो हम जब भक्ति में लग जाते हैं तो बाकी सब कुछ योग और जो अलग पद्धतियाँ है वो करने की आवश्यकता नहीं,
परंतु हमारी भक्ति की अग्नि भी
प्रज्वलित
होनी चाहिए, नहीं तो भक्ति मंदाग्नि हो गई तो फिर नहीं हो सकती। बहुत अच्छा। और कोई
भक्ति जो है भगवान श्री कृष्ण के अल्लादिनी शक्ति गाने होने के कारण दिव्य है, और जो भी इस भक्ति का पालन करता है वो भी दिव्य बन जाता है।
बहुत अच्छा। और
बाकी मार्ग जो है अध्यात्मिक मार्ग वो भक्ति के ऊपर निर्भर है, वो अपने आप में पूर्ण नहीं है,
परंतु
भक्ति परिपूर्ण है अपने आप में, वो भक्ति करने से ही परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
बहुत अच्छा। और कोई
अन्य मार्गों में ज्ञान योगी कर्म योगी जो अंततोगत्वा ब्रह्मन निराकार ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय उधर भी नहीं रह सकते क्योंकि वहां रस का आस्वादन आदान प्रदान नहीं है, तो फिर से वो उनका पतन हो जाता है।
बहुत अच्छा। और कोई
भगवान प्रेम के पुजारी है, और वो केवल प्रेम से जो भी हम देंगे जैसे पत्रम पुष्पम फलम तो वो स्वीकार करते हैं।
बहुत अच्छा। सर्वदर्शन और कोई राजेश
अस्वस्थ का कारण है अपचन, अपचन के कारण स्वस्थ ठीक नहीं रहता, तो इसलिए हमें अच्छा अगर जटर अग्नि हमारा अच्छा रहेगा, हमारा हेल्थ अच्छा।
बहुत अच्छा। और
दुकारी करते रहते हैं तो उसमें वो लोग प्रबल को छोड़ दिया, जब ये जब उन्नत स्तर पर पहुँचते हैं तो भगवान को छोड़ देते हैं तो फिर वो अपने पद से गिर जाते हैं।
बहुत अच्छा। अंतिम बात कोई,
हम जो भक्ति कर रहे हैं ये साधारण नहीं है, ये दिव्य है, अति परिचय का हो गया, इसको साधारण समझना नहीं चाहिए। केवल प्रभुपाद जी ने जो हमें दर्शन दिए उसको गंभीरता से अगर करेंगे तो हम भी दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकते।
अच्छी बात, वेरी गुड, ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।